प्यारे भाई और बहन,
आज हम पहुंच गए हमारी क्लास नंबर 21, जिसका नाम है औरत का वंश और सांप का वंश। तो आज हम दो वंशों के बारे में बात कर रहे हैं, औरत का वंश और सांप का वंश, जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में की थी मनुष्य जाति की शुरुआत के समय। मनुष्य जाति की शुरुआत के समय परमेश्वर ने अदन के बाग में एक भविष्यवाणी की। ये कब हुआ? जब हवा धोखे में आके पाप और अनाज्ञाकारी में पड़ गई, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया और वो परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए जिसने उनको भरमाया था वो सांप था। और हम जानते हैं कि आदम ने ये फैसला किया अपनी मर्जी से कि वो हवा के पद चिन्हों पे चले, जैसे हवा ने वो फल खाया तो वो भी खाए, तो जानबूझ के उसने। तो आदम तो धोखे में नहीं आया था, ये तो हम जानते हैं, हवा धोखे में आई थी, आदम नहीं धोखे में आया। तो आदम ने जानबूझ के परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन किया। तो उसके बाद परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की, जो पढ़ते हैं हम उत्पत्ति 3 का 15।
और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा।
तो यहाँ पे परमेश्वर इस वचन में बोल रहे हैं कि मैं तेरे और औरत के वंश के बीच में दुश्मनी डालूंगा। ठीक है, तेरे और स्त्री के बीच में दुश्मनी डालूंगा और तेरे और तेरे वंश के, मतलब दुश्मनी होगी इनमें, कि तू उसके एड़ी काटेगा और वो तुम्हारा सर कुचलेगा। तो ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में की। अभी ये दो वंश कौन है और इस भविष्यवाणी का मतलब क्या है, तो इसे समझने के लिए हम थोड़े पिछले वचन भी पढ़ेंगे, 9 से लेके 14 तक।
तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे दहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा ने सांप से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा।
तो जब हम इस भविष्यवाणी की बैकग्राउंड देखते हैं, पीछे देखते हैं, तो क्या देखते हैं? परमेश्वर बातचीत करता है और पूछते हैं, क्या तुमने ये फल खाया? वो बोलता, औरत ने मुझे दिया। औरत बोलती, वो सांप ने ऐसा किया। तो सांप को परमेश्वर बोलता है कि तू हमेशा अपने पेट के बल चलेगा और मिट्टी खाएगा। तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग शैतान को एक्चुअली सांप, जब सांप देखे तो बोलते हैं शैतान है ये, तो सांप को इस्तेमाल किया था। अब ये सांप का वंश का क्या मतलब है? शायद तो हम देखते हैं आजकल, हम सांप की सर पे मारे तभी मरता है वो, है ना? तो वो सब ये भविष्यवाणी मानते हैं कि परमेश्वर ने दुश्मनी डाली हुई है उनकी वाटिका में, ये शैतान है, इसलिए इसको मारना है, इसके सर पे मारना है और ऐसा। लेकिन लेकिन यहाँ अभी हम बात करेंगे कुछ खास, क्योंकि ये सांप के वंश में और औरत के वंश में एक दुश्मनी की बात हो रही है। अभी ये सांप का वंश कौन है और ये औरत का वंश कौन है? पहली बात तो ये साधारण भाषा नहीं है, ये बात समझ लो।
सांप का वंश,
ये उस सांप की बात नहीं हो रही है।
हाँ,
क्योंकि ये सांप कभी मिट्टी नहीं खाते हैं। हाँ, मिट्टी खाने वाले भी होते हैं लेकिन हमेशा मिट्टी नहीं खाते हैं। बोलते तू क्या बोला, हमेशा क्या खाएगा? तो वो हमेशा मिट्टी तो नहीं खाते। इसका मतलब ये सांप वो सांप की बात नहीं हो रही है जो धरती पे चल रहा है, ये कोई और सांप है और उसका वंश भी है, उसका वंश भी है। यस यस, ये चिन्ह वाली भाषा है। तो ये सारी सुने, बताऊंगा मैं, बताऊंगा सब। तो ये भविष्यवाणी भाषा में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। तो भविष्यवाणी भाषा अगर सिंपल भाषा में बोल दी तो भविष्यवाणी ही क्या रही, अगर उसमें कोई छिपी हुई बात ना हो तो। तो ये भविष्यवाणी चिनात्मक रूप में बात कर रही है कि एक वंश इस सांप के सर को कुचलेगा और सांप को मारेगा। और सांप को हमेशा कैसे मरता है? सांप तो चिन्ह है, तो सांप हमेशा कैसे मरता है? सर पे मारने से ही मरता है। तो अभी ये सांप कौन है? ये सांप है सबसे बड़ा धोखेबाज। कौन? शैतान। ये शैतान है वो सांप जिसके बारे में ये बात हो रही है। अभी शैतान का कुछ वंश है, ठीक है? तो ये सब अभी हमें देखना है। औरत का वंश कौन हो सकता है? औरत का वंश कौन हो सकता है? क्योंकि बोला ना औरत का वंश और सांप का वंश। तो ये शिक्षा जो बाइबल कॉलेजेस में शिक्षा दी जाती है वो ये माना जाता है कि ये हवा जो थी ना, माँ हवा, उसके बेटे की बात हो रही है, जो केन, जो उसका सबसे पहले आदम का बेटा कौन था? केन, ठीक है? केन की बारे में बात हो रही है। तो लेकिन कैन और आबिल की कहानी का तो हम अंत देखते कैसे हुआ, कैन ने आबिल को क्या कर दिया? हाँ, मार दिया। तो और फिर वो उधर से भाग भी गया, ठीक है? तो उसके बाद जब हम आगे आते हैं दूसरे संसार में, फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने और कैन का वंश तो हम देखते ही हैं। कैन और पहले संसार में बचा कौन? सिर्फ नूह और उसका परिवार, बाकी सब तो खत्म हो गया। तो ये उसकी भी बात नहीं हो रही है ना। उसके बाद दूसरे संसार में परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है जो मूर्ति पूजा करता था। अब्राहम पहले मूर्ति पूजा करता था, ठीक है? तो उसको उसकी जमीन से बुलाया और उसके साथ एक वायदा किया। वो वायदा क्या था पढ़ते हैं हम उत्पत्ति 12:1-3।
यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे।
तो ये बहुत बड़ा वायदा था परमेश्वर ने अब्राहम, जो मूर्ति पूजा था जिसका नाम बाद में अब्राहम हुआ, ठीक है? परमेश्वर ने उसके साथ बहुत बड़ा, उसके और उसके वंश के साथ बहुत बड़ा वायदा किया कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा देश बनाऊंगा और ये सारे धरती के देश जातियां तेरे घराने से आशीष पाएंगी। बट क्या ये अब्राहम के जीवन काल में पूरा हुआ? नहीं हुआ, ठीक है? अब्राहम के बेचारा आया, मर गया, लेकिन ये वायदा उसके जीवन काल में पैदा नहीं हुआ, ठीक है? तो अब्राहम पहली बात तो इब्राहिम की कंफ्यूजन क्या थी, क्या थी इब्राहिम, क्या परमेश्वर बोलता था तेरे एक बच्चा होगा, तेरे एक बच्चे, ये यहाँ पे बोला ना मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा, तो पहली बात तो उत्तराधिकारी तो होना चाहिए ना, तो इब्राहिम उत्पत्ति 15:2-3 में पढ़ लो, जब इलियाजर जो मेन नौकर था इब्राहिम उसको बोलता है ये मेरा उत्तराधिकारी है, पढ़ लो।
अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये वासी एलियाजर होगा, अंत मुझे क्या देगा। और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस।
तो ये लेजर, ये इब्राहिम सोच रहा है जो मेरा नौकर है जो मेरा मुख्य दास है वही होगा मेरा उत्तराधिकारी, लेकिन परमेश्वर उसको क्लियर करते हैं अगले वचन में, 4 में पढ़ लो, नहीं इब्राहिम ऐसा नहीं।
यहोवा ने कहा ये वचन उसके पास पहुंचा ये तेरा वारिस ना होगा।
हाँ
तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा,
तेरा खुद का पुत्र तेरा वारिस होगा, तेरा खुद का परमेश्वर उसको, इब्राहिम बोलता है नहीं मेरा नौकर होगा मेरा उत्तराधिकारी, परमेश्वर उसको मैसेज पहुंचाता है देख तेरा उत्तराधिकारी तेरे निजी निज संतान होगी। ठीक है, तो देखो परमेश्वर ने फिर वायदा किया उसके साथ कि तेरा तेरा एक खुद का पुत्र होगा, खुद का पुत्र। तो इब्राहिम और सारा इंतजार किया बहुत साल इंतजार किया। ठीक है, फिर उत्पत्ति 16:2-4 में पढ़ लो फिर क्या हुआ। तो इब्राहिम की पत्नी ने उसे एक सलाह दी,
सारे ने अब्राहम से कहा देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए।
तो सारा जो उसकी नौकरानी थी हागार हाजरा, तो हाजरा बोलती के तू उसके पास जा ताकि वो तेरे लिए एक बच्चा पैदा करे, क्योंकि मैं तो वो पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसका नाम, उस पुत्र का नाम था इश्माइल, इश्माइल था वो नाम। और इब्राहिम ने सोचा शायद यही है मेरी संतान, उस वक्त इब्राहिम 86 साल का था, 15 और 16
अच्छा।
पढ़ो
यही 15-16
हाँ इसी का 15-16
इस हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था इश्माइल रखा। तब जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष
तो 86 वर्ष का था जब ये इश्माइल पैदा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, सारा जो 90 साल की हो गई और इब्राहिम 99 साल का हुआ, देखते हैं आगे क्या हुआ। 17:16-17 में,
17:16-17
हाँ
अच्छा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति का मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे।
तो परमेश्वर फिर मैसेज पहुंचाता है इब्राहिम को, इब्राहिम इस उम्र में 99 साल की उम्र में इब्राहिम तुम्हें एक पुत्र होगा सारा से। तो उनको लगता है मजाक, परमेश्वर हमसे मजाक कर रहा है। तो पढ़ लो 18:11
अब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति ही बूढ़ा है, क्या मुझे ये सुख होगा।
तो यहाँ पे ये देखो, एक मिनट यहाँ पे रुकते हैं, एक मैं बात बोलना चाहूँगा। आजकल अगर तो कोई तुक्का लग जाए किसी पास्टर का तो बोलता है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें कर दिया, अगर नहीं हुआ तो आंसर ये होता विश्वास में कमी है। तो इनका क्या था,
तो
हंस रहे थे, वो मजाक कर रहे थे, अरे हमारे साथ ऐसा हो सकता है, अगर परमेश्वर ने करना है ना तो वो करेगा, पक्का करेगा। ठीक है, अगर करना है तो ये बातें जो
तुमने एक वचन के द्वारा जवाब दिया उन लोगों के लिए जो बोलते हैं तो अविश्वास में
हाँ तुम्हारे विश्वास में कमी है। तो इब्राहिम और सारा मजाक उड़ाते हैं और इब्राहिम ने सोचा शायद मेरी वो जो वंश है वो इश्माइल ही है। पढ़ लो 17:18 में, पढ़ लो 17:18।
अच्छा, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, ये तो होता है।
बस परमेश्वर से बोलता है बस इश्माइल पे अपनी दया कृपा रखना, बस यही मेरे लिए काफी है। लेकिन 19 में पढ़ लो परमेश्वर क्या उत्तर देता है फिर उसको।
19 में
हाँ जी,
तब परमेश्वर ने कहा नीचे तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसाक रखना।
देखो
और
देखो
और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उससे पश्चात उसके वंश के लिए।
इब्राहिम बार बार, इब्राहिम पहले सोचता है एलाइजर मेरा उत्तराधिकारी होगा, फिर वो सोचता है इश्माइल मेरा उत्तराधिकारी होगा, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं बार बार सही कर रहे हैं, नहीं तेरा अपना होगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तेरा अपना होगा, उसका नाम इसाक रखना। तो ये सब एक इब्राहिम के लिए एक अविश्वसनीय स्थिति थी, ये ऐसा कैसे हो सकता है, और इसीलिए परमेश्वर सही समय का इंतजार करता है, सही समय का इंतजार करता है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो दिन ब दिन मजबूत हो विश्वास में। ठीक है, तो चलो पैदा हुआ कौन, तो जब ये हुआ सब कुछ इसाक का जन्म हुआ, इब्राहिम का विश्वास किस पे बढ़ गया, परमेश्वर पे बढ़ गया और बढ़ता गया। जब इसाक को देखा होगा वाह परमेश्वर क्या बात है, बढ़ गया। तो प्रभु ने सोचा चलो ये मेरे पे बहुत विश्वास किया ना, अब इसका परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा भी कैसे ली देख लो पहले, चलो पढ़ो पढ़ो आगे उत्पत्ति 22:1-2।
इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को खास अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिय देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चला।
तो ये बातें हुई, इब्राहिम पैदा हुआ, पैदा होने के बाद परमेश्वर बोल रहा है चल अब इसको बलि चढ़ा दे। ठीक है, तो इब्राहिम का दूध छूटा, बहुत बड़ा, जब दूध छुड़ाया जाता था तो एक एक त्यौहार टाइप मनाया जाता था, एक पार्टी टाइप होती थी। ठीक है, तो 8-12 तक पढ़ लो, 21:8-12।
हाँ, वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया और इसाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे।
तो एक दिन जब दूध छुड़ा दिया गया, इस्माइल इसका मजाक उड़ा रहा था इसाक को, और सारा ने देख लिया, सारा ने इब्राहिम को बोला इन दोनों को निकाल दे,
निकाल दे। क्योंकि इस दासी को पुत्र से निकाल दे क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसाक के साथ भागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी।
इब्राहिम के तो दोनों ही पुत्र थे ना इस्माइल। हाँ,
परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसाक से ही चलेगा।
तो देखो पहले क्या परमेश्वर ये स्थिति पैदा की जिससे इस्माइल को क्या कर दिया, इस्माइल और हाजरा को निकलवा दिया, बोल बोलो इनको जैसे सारा बोल रही है वैसे करो। अब परमेश्वर क्या, इस्माइल तो गया, उसके बाद परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको, अब मुझे इसका बलिदान चाहिए, तेरे जिस जो तेरा पुत्र है ना इसाक, जिसे तो बहुत प्रेम रखता है, उसे पहाड़ी मोरिया पहाड़ी पे लेके चल और उसको बलिदान दे। ठीक है, तो ये इब्राहिम, चलो ये जब परमेश्वर ने ऐसा बोला उसको बलिदान के लिए, उसने सोचा चलो ठीक है इसाक का बलिदान दे दूंगा, एक तो होगा। अभी थोड़ी देर बाद परमेश्वर बोला इसको भी घर से निकाल दे, तो ये कैसी परीक्षा है ना, ये कैसी परीक्षा है। इब्राहिम की जगह पे जरा आके सोचो क्या क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, उसके मन में। ठीक है, तो परमेश्वर ने वो पुत्र को 3 दिन की यात्रा पे खेत पे जाने के बाद उस पहाड़ी पे जाके बलिदान करने के लिए बोला, जिससे वो बहुत प्रेम करता था। कितना इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और ज्यादा चिंता नहीं दिखाई, और ना ही अपने चेहरे पे ऐसी कोई शकस्त प्रकट होने देगी होगी, क्योंकि जब उसने बोला अगर मैं इसको लेके ना सारा मैं इसको लेके एक लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ साथ को, हाँ तो ऐसे बोला होगा कि ऐसे मैं इस बेटे को उस पहाड़ी पे थी जो 3 दिन की यात्रा से के करने के बाद आएगी बलिदान करने जा रहा हूँ, तो इब्राहिम सब तैयारी, पता नहीं ये इब्राहिम ही जानता उसने कैसे बोला होगा, कैसे माँ को मनाया होगा, क्योंकि वो इतना माँ के करीब था है ना, तो डायरेक्ट क्या पता नहीं क्या बोला होगा, अकाउंट नहीं है बाइबल में, पता नहीं है। ठीक है, तो 3 दिन यात्रा के बाद पढ़ते हैं हम उत्पत्ति 22:5।
और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरे रहो, वह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे।
तो इब्राहिम का इतना विश्वास था परमेश्वर पे, इतना विश्वास था कि ये जानने के बावजूद कि मैं इसको बलिदान करने जा रहा हूँ, परमेश्वर ने इसके बलिदान बलिदान मांगा है, बलिदान करने जा रहा हूँ, तो क्या बोलता मैं और ये लड़का वापस आएंगे, मैं और ये लड़का तुम इधर ही रुको हम वापस आएंगे। ठीक है, हम कुर्बानी देके वापस आएंगे। तो कितना इतना विश्वास उसको कैसे हुआ होगा, ऑब्वियसली तजुर्बे से, जो परमेश्वर ने 99 साल की उम्र में उसको फलवंत कर सकता है, क्या वो परमेश्वर उसको बलिदान किया हुआ इसाक नहीं वापस दे सकता, तो जरा सोचो। और ये सब उसके विश्वास को मजबूती की वजह से वो इस घटना को सह पाया। हमारे और आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम विश्वास में भरोसे में दृढ़ नहीं होते परमेश्वर पे, हमें वो क्या बोलते हैं, हमें वो बहादुरी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए वो अपने पुत्रों को सॉरी नौकरों को बोलता है हम लोग वापस आएंगे। तो शायद इब्राहिम ने सोचा शायद मुर्दों के पुनर्थान के बारे में कि परमेश्वर ये कर सकता है, पुनर्थान हो सकता है। और चलो इब्राहिम का जो परीक्षा थी वो नजदीक पहुंची और एंड जैसे बोलते हैं ना क्लाइमेक्स शुरू हुआ। तो 22:9-10 तक पढ़ते हैं।
9-10 तक जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब राम ने वहां बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांधकर बेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे।
तो ये देखो कितनी बड़ी बात है, जब पहाड़ी चढ़ रहे थे ना, पहले 7 और 8 में पढ़ो, 7 और 8 में जब पहाड़ी चढ़ रहे थे तो इसाक पूछ रहा है हम जा तो रहे हैं लेकिन
बकरा
बकरा कहाँ है?
सातवां वर्ण। इसाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग वो लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ बकरी कहाँ है?
हाँ
अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा।
तो अब्राहम भी सोच रहा होगा कोई बात नहीं, उधर पहुंचेंगे तो परमेश्वर ने बांध के रखा हुआ होगा, हम ले लेंगे और बलिदान कर देंगे। नहीं, लेकिन अब्राहम को तो खैर चलो पता ही था कि इसहाक की बलिदान देना है, तो वो उसको बोल रहा उधर परमेश्वर मुहैया करवाएगा। तो ऐसे जब पहुंचे और बनाया सब कुछ, वेदी वेदी बना दी सब कुछ करना, और अब्राहम हाथ उठाने जा रहा था तो मतलब अभी वेदी बनाई और चक्कू निकाला, और जब सारी वेदी बना ली होगी तो वो इसाक तू मुझसे पूछ रहा था ना बेटा वो बकरा का है होम बलि का, तो बेटा तू है वो, चल अब आ जा लेट जा। तो इसाक ने सोचा होगा पर पिता ही आपने तो मुझे बोला था परमेश्वर वहाँ मुहैया कर देगा, मुझे तो दिख नहीं रहा, तो ये सब क्या उधर हुआ होगा, हमें कुछ
परमेश्वर की कुछ नहीं है,
कल्पना,
कल्पना है सबकी।
हम सिर्फ
ये
कल्पना कर
सिर्फ हमारे
सकते हैं।
परमेश्वर वो चिन्ह की तरह सिखा रहे हैं बस।
हाँ, तो ऐसे हुआ, और जब उसने हाथ उठाया तो दूत आता है। क्या दूत आता है? इससे हाथ उठा ले, 12 में पढ़ लो।
इसकी 22।
हाँ
उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसका कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है।
तो ये था टेस्ट। विश्वास, खाली परमेश्वर को विश्वास नहीं चाहिए, परखा हुआ विश्वास चाहिए। परख करेगा परमेश्वर, और परख तब होती है जब आपको स्थिति में डालेगा, क्या तुम कर सकते हो, तब होती है परख। तब
कैसे
तब बन गया इब्राहिम विश्वास का पिता, क्योंकि ऐसा करना किसी के बस की बात नहीं है। तो कैसी थी वो यात्रा और कितना सुंदर था ये पाठ, और परमेश्वर ने इसके बाद उसके साथ एक और बड़ा वायदा किया, एक और वायदा किया। पढ़ लो, जरा सोचो, अब जरा सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो। इब्राहिम को तो स्वर्गीय बुलावा भी नहीं था, तो इतना वफादार था, और जो लोग स्वर्गीय बुलावे की आशा रखते हैं उनको कितना वफादार होना चाहिए, जरा सोच लो, सोच लो। उसको तो परमेश्वर ने धरती का राजा बनाना था, तो इतना उसको वफादारी दिखानी पड़ी, हमें कितनी वफादारी दिखानी होगी अगर हमें 1,44,000 में पहुंचना है, तो जरा सोच लो। तो आगे पढ़ लो 22 का 15 से लेके 18 तक, फिर जो वायदा परमेश्वर करता है।
फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा, पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है।
देखो, अभी अभी एक और चीज मैं नोट करवा रहा हूं आपको, एक नोट। ये दूत है जो परमेश्वर के बिहाफ पे बात कर रहा है, और दूत कैसे बात कर रहा है, ये परमेश्वर की वाणी है। मैं अभी वो दूत नहीं बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है?
परमेश्वर की बात कर रहा है।
परमेश्वर बोल रहा है लेकिन दूत के जरिए से, परमेश्वर खुद नहीं आ रहे हैं, खुद नहीं आ रहे हैं, दूत से बात कर रहे हैं। हाँ पढ़ो।
किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के तकिनके की समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा।
तो क्योंकि तुमने मेरी आवाज को सुना है, माना है, तो इसे बोलते हैं इब्राहिमिक प्रॉमिस, यानी इब्राहिम के साथ किया हुआ वायदा। तो इस वायदे में दो तरह के लोग आते हैं, एक तो आकाश का तारागण और दूसरा समंदर की रेत के किनके के समान। दो, तो इब्राहिम के साथ जो वंश था अब्राहम के वंश के दो प्रभु यीशु मसीह ने हिस्से किए, एक तो आकाश का तारागण और एक तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब्राहम की संतान में से दो ग्रुप ऐसे होंगे, दो ग्रुप होंगे जो सारी धरती को क्या देंगे, आशीष, जो सारी धरती को क्या करेंगे, आशीष देंगे। अभी ये दो कौन है? पहला है आकाश का तारागण। अब हम चिन्ह की बात कर रहे हैं तो चिन्ह में ही जाना है, क्योंकि वो इसहाक तो मर गया, इसहाक मर गया, इसी यकूब भी मर गया, इब्राहिम भी मर गया, उनके जीवन में तो कभी ये बात पूरी नहीं हुई। तो आकाश का तारागण और समंदर की रेत के कण, तो हम पहले ग्रुप की बात करेंगे। आकाश का तारागण कौन है? आकाश का तारागण, आकाश का तारागण, सबसे पहले आकाश शब्द का मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था ना, आकाश
तो, आकाश तो
हाँ तीन थे ना, आकाश के मतलब
हवा
में आत्मिक राज्य, बस बस बस। तो जो हवा में आत्मिक राज्य है, यानी जो जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, तो आकाश जो हवा में है, ठीक है, ये है आकाश का तारागण, ये एक ग्रुप है। और ये कौन है? ये है आत्मिक वंश अब्राहम के। अब्राहम का एक शारीरिक वंश है, एक आत्मिक वंश है। अभी आत्मिक वंश के बारे में हम पढ़ते हैं गलातियां 3:7।
अब ये जान दो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है।
तो अब्राहम का आत्मिक वंश कौन है? विश्वासी। अभी यहाँ पे विश्वासी, विश्वासी नहीं कह सकते, इनको बोल सकते हैं वफादार, वो ईसाई जो वफादार हैं परमेश्वर के प्रति। यस, 144,000 है आकाश का तारागण, ठीक है। आगे पढ़ लो इब्रानिया 3:6।
परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा की घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें।
तो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, अभी आपको एक और बात बताऊं, मसीह इंग्लिश में क्राइस्ट, हम बोलते हैं ना जीसस क्राइस्ट, जीसस कौन है? हेड। अभी क्राइस्ट कंप्लीट पता कैसे होता है? जीसस क्राइस्ट पता कैसे बनता है? क्राइस्ट, ठीक है, प्रभु हर एक शरीर का एक सर है और एक शरीर है, ठीक है। अभी सर खाली हो, धड़ ना हो, तो कंप्लीट है
नहीं।
तो क्राइस्ट कंप्लीट पता कब होता है? जब धड़ होगी। हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और बॉडी कौन है? तो वो मिलके बनता है क्राइस्ट। जब मसीह बोलते ना, मसीह, मसीह का मतलब है हेड एंड बॉडी। तो ये बोल रहे हैं कि कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, वो है अब्राहम की आत्मिक संतान और वो है आकाश का तारागण, यानी आत्मिक रूप में, आत्मिक रूप में हवा में राज्य करने वाले प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया 144,000, ठीक है। उसके बाद दूसरा वंश, ये समझ आ गया आकाश का तारागण कौन है? आकाश का तारागण है, ठीक है, अब्राहम के वंश में के आत्मिक लोग जो स्वर्गीय उदारता में जाएंगे। उसके बाद है दूसरा समंदर की रेत के कण। अभी ये समंदर की रेत के कण कौन है? ये है शरीर के इजराइल देश, शरीर के इजराइल देश। जो अब तक हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के राज्य की बहाली शुरू होगी कहां से होगी? इसराइल से, यरूशलम से निकलेगा परमेश्वर का वचन। और वहां पे बैठने वाले कौन होंगे? इब्राहिम, इसहाक, याकूब। तो इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इब्राहिम के साथ किया हुआ वायदा कब पूरा होगा जाके? जब वो वापस आ जाएंगे और राज्य की बहाली उधर से शुरू हो जाएगी। दोनों मिलके संसार को क्या करेंगे? आशीष देंगे। जब स्वर्ग राज्य शुरू हो जाएगा तब जाके वो वायदा पूरा होगा जो परमेश्वर ने आज से 4000 साल पहले किया, आज से लगभग 6000 साल पहले किया, 5-6000 पहले। सोचो जरा। तो ये तो समंदर की रेत का कण कौन है? शरीरिक यहूदी, यानी शरीरिक इजराइल।
उन्होंने परमेश्वर को इंकार किया था।
हाँ, तो उनपे भी परमेश्वर ने आशीष करनी है, क्योंकि असली जो वायदा था वो तो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ ही किया था ना। तो इब्राहिम का वो वंश है सारा कौन? इजरायली यहूदी। ठीक है, तो समंदर की रेत का, अभी ये दो हो गए, ठीक है, एक तो आत्मिक, एक तो शरीरिक। शरीरिक कौन है? इजराइल देश। और आत्मिक कौन है? कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया। ठीक है, तो ये जो 3:5 पढ़ लो, इब्रानियों 3:5, उसमें आपको बता दे जो दासों का घर।
मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास से उनके रहा।
हाँ,
जिन बातों का वर्णन होने वाला था।
तो ये सब पता कौन है? ये सब है आबिल से शुरू होते हैं। आबिल जो अदन की वाटिका में इब्राहिम का पुत्र, सॉरी आदम का पुत्र, केन का भाई, वहां से शुरू होके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक जितने भी थे सबको परमेश्वर इज़राइल में बिठाएगा और वहां से चलेगा परमेश्वर का राज्य। फिर अमेरिका नहीं, ओबामा नहीं फैसले लेगा,
ये सब कुछ नहीं होगा,
ये लेंगे, ये लेंगे,
ये नाम नहीं होंगे
ना। हाँ हाँ, ये सब ऐसे ही रहना है, कुछ बदलेगा नहीं, बस राज्य करने का तरीका धार्मिकता होगा।
वो चार जो संगठन बताए थे वो खत्म हो जाएंगे,
वो चार संगठनों को चलाने वाले बदल जाएंगे।
मतलब वो जो अभी ये चल रहा है झूठ फरेब बेईमानी, ये सब नहीं होगा, वो संगठन वही होंगे।
संगठन वही होंगे, उनको चलाने वाले बदल जाएंगे। जैसे सरकार, सरकार को चलाने वाले आजकल ये चोर लोग, बदल के कौन आ जाएंगे? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, सब सब। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये है तब जाके जो इब्राहिम के साथ वायदा किया है अदन की वाटिका में, तब जाके पूरा होगा ये वायदा। क्योंकि परमेश्वर ने उस वायदे में क्या बोला था? मैं अपनी सौगंध खा के बोलता हूँ, सौगंध खा के बोलता हूँ। तो उस सौगंध की वैल्यू देख लो क्या है। पौलुस बताएगा इब्रानियों 13-18 पढ़ लो, 13-18
परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया
तो अपनी शपथ खाई,
अपनी शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस स्मृति से उसने धीरे धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने मन से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं अपने मन से, और उनके हर एक विवाह का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वासियों पर और वासियों बारिशों पर और विताप रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो उसका शपथ को बीच में लाया ताकि तो वे बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर पर झूठा ठहरना अनहोना है।
तो परमेश्वर दो चीजें नहीं कर सकता, एक तो परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता और ना ही अपने किए हुए वायदों को तोड़ सकता है। ये दो चीजें परमेश्वर नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, तो परमेश्वर ने बार बार ये वायदा किया, पहले इब्राहिम के साथ किया, बाद में इसहाक के साथ किया। पढ़ लो उत्पत्ति 26:4, वही वायदा।
जी मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियों जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य माने।
अभी ये वायदा इसहाक के जीवन में भी नहीं पूरा हुआ, फिर किसको बोलता है परमेश्वर? याकूब को भी यही वायदा बोलता है, 28:14 में पढ़ लो।
इसी में
हाँ जी
उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो बहुत
28
सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अंत हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधे।
28:14
पढ़ो, और तेरा वंश भूमि के धूल के किंतु के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरा उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे।
तो बार बार वो इब्राहिम एक वायदा इब्राहिम की मृत्यु के बाद भी आ रहा है और उसके बाद बहुत सालों बाद जाके दाऊद भी ये वायदे को याद करता है।
नहीं पृथ्वी, ये आशीष तो अब्राहम ने सिर्फ परमेश्वर ने अब्राहम को ही दी थी, ये तो दोहरा ही इसके बस में कंडीशन है, बार बार रिपीट की रिपीट की।
हाँ
एक्चुअली शपथ तो अब्राहम से ही खाई थी, बाकी किसी से तो, इनको बस को रिपीट किया उसने।
तो वही तो बोल रहे हैं ना, वही तो बोल रहे हैं कि वही वायदा परमेश्वर बार बार याद दिलवा रहा है लेकिन इनके जीवन में पूरा नहीं हुआ। ठीक है, फिर यही वायदा याद करता है कौन? दाऊद। पढ़ो जरा 100 भजन संहिता 105 का 8-11।
उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो, हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, है ना?
नहीं 105 का 8-11 तक।
अच्छा, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है आया है।
हाँ।
ये वही वचन है जो उसने हजार पीढ़ियों के लिए ठहराया है, वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके इसराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, मैं तुम्हारा निर्भाग होगा।
तो देखो ये सारा जो वो एक वायदा है उसी के विषय में परमेश्वर बार 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 अपने वचन में दोहरा रहा है। ठीक है, तो जब याकूब मर रहा था तो उस वक्त पढ़ते हैं याकूब 49-10 तक उसका, हाँ याकूब के खास वंश यहूदा यहूदा के साथ कुछ बातचीत हो रही है। हाँ ये सुनिए अभी और सुनिए, अभी अभी आपको एक और क्लियर कर रहा हूँ बात। ये याकूब का जो एक पुत्र था यहूदा, यहूदा का वंश है प्रभु यीशु मसीह। हाँ ये पढ़ लो।
गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंगी के समान दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छोड़ेगा जब तक शीलो ना आए।
शीलो तरह कौन है? यीशु मसीह। शीलो नाम है प्रभु यीशु मसीह का।
ना आए तब तक ना तो यहूदा से गर्दन छूटेगा न उसके वंश में से व्यवस्था देने वाला अलग होगा।
देखो तो ये
सॉरी मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी भाई, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं लिखा हुआ है कि यहूदा का कौन शो किया हुआ इसने, यहूदा का चिन्ह वाला है ना ऐसा बनता का वहां से यीशु पैदा हुआ है?
यस, यहूदा के नए नियम में भी आएगा, रुक जाओ आपको दिखा देते हैं वो भी वचन। ठीक है, तो ये इज़राइल के जो याकूब, याकूब के 12 पुत्रों में से जो आशीषित वन था वो था यहूदा, यहूदा, ठीक है। तो अभी ये कौन हो सकता है वो औरत का वंश जो यहूदा से पैदा हुआ, कौन हो सकता है वो औरत का वंश? गलातियां 3:16 पढ़ लो।
अंत प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को और वह मसीह है।
वंशों को नहीं बोला है,
वंश
एक को बोला है और वो कौन है? मसीह। तो अब्राहम का जो वंश, जो आकाश का तारागण है, वो कौन है? मसीह। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रहस्य है मसीह, जैसे मैंने बोला ना अभी आपको समझाया था, मसीह कौन है? हेड एंड बॉडी, मतलब शरीर पूरा, हेड और बॉडी होता है, इसमें दो हैं, यीशु मसीह और कलीसिया, ये दोनों मिलके बनता है मसीह। ये बात पढ़ लो अफसिया 1:22-23,
अफसिया
1:22-23।
और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि कहलाया।
हेड
क्लिसिया को, क्लिसिया को, क्लिसिया को दे दिया। ये उसकी दे है।
हाँ, तो ये देखो मसीह का एक हेड है, एक दे है। हेड कौन है? यीशुस। एंड बॉडी कौन है? कलीसिया। तो दोनों मिलके बनता है जीसस क्राइस्ट। तो क्राइस्ट कब बनता है? हेड एंड बॉडी को मिला के। तो ये है क्राइस्ट। क्राइस्ट कंप्लीट कब होता है? जब उसका शरीर कंप्लीट हो जाए। मान लो मेरा एक हाथ नहीं है तो मैं कंप्लीट हूँ, या मेरा एक ये 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 इतना है तो मैं कंप्लीट हूँ? नहीं, पूरी बॉडी होनी चाहिए ना। तो पूरी बॉडी की गिनती कितनी है? 144,000, ठीक है। ये है कलीसिया, ये है प्रभु यीशु मसीह की देह, ये है प्रभु यीशु मसीह का शरीर, ये है ग्रुप जो स्वर्ग में जाके सिंहासन पे बैठेगा। पढ़ लो ये बात फिर से, गलातियां 3:7-29।
अतः वह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। इसके बाद 29, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो।
अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की परमेश्वर ने, उसके वारिस भी हो तुम। अगर मसीह के हो तो अब्राहम का वंश। अभी अब्राहम का कौन सा वंश? शारीरिक वंश नहीं, आकाश का तारागण वाला, ठीक है। देखो साफ साफ ये बात है। तो अभी कुछ समझते हैं इस शरीर के बारे में, क्योंकि इस औरत का वंश है ना, औरत का वंश, सीड मतलब वंश है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:1।
फिर मैंने दृष्टि की और देखो वे मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन हैं।
तो देख लो ये कौन है? ये कलीसिया है, यीशु मसीह और कलीसिया है। तो इसलिए औरत का वंश पता कौन है? मसीह। औरत का वंश कौन है? मसीह। मसीह कौन है? मसीह कौन है? यीशु और कलीसिया। यही यही बार बार मैं बोल रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट। देखिए उसने बोला वंश, औरत का वंश, औरत का वंश कौन है? मसीह। मसीह कौन है? यीशु और कलीसिया। यीशु और कलीसिया यानी 144,000 एक, कलीसिया 144,000 और मसीह यीशु एक, तो 144,000 एक। ये है औरत का वंश, ठीक है। तो अभी ये चुनाव चल रहा है, ये चुनाव पता कैसे चल रहा है, ये कलीसिया का चुनाव। तो सब बोलते हैं हमें स्वर्ग में जाना है, लेकिन किसी को ये योजना का नहीं पता है कि सीट कितनी है, 144,000, और वो बड़े खास होंगे, उनका टेस्ट बड़ा खास होगा, उनको बड़े तजुर्बों से। अगर सोचो, अगर अब्राहम जिसको धरती का इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दी परमेश्वर ने, उसको इतनी वफादारी दी, तो जरा सोचो हमारी जो स्वर्ग में जाने जाने की इच्छा रखते हैं, उनका टेस्ट और विश्वास कैसा होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए। तो उनका चुनाव कैसे होता है, ये याकूब 1:18 में पढ़ लो। याकूब 1:18, हाँ,
याकूब 1:18
इब्रानिया के बाद,
याकूब 1:18।
उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के उत्तम फल हों।
पहला फल, उत्तम फल, फर्स्ट फ्रूट इंग्लिश में है, फर्स्ट फ्रूट। तो पहला फल यानी कि जो कलीसिया है, उनका जन्म पता कैसे शुरू होता है, सत्य के वचन से। ये वचन बोल रहा है, देख लो, जब तक आपको सत्य नहीं मिलता ना, आपका जन्म भी शुरू नहीं होता है, ये जन्म भी शुरू नहीं होता है। तो ये जो आप देख रहे हो या जिनसे मिल रहे हो, इनका अभी जन्म भी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास सत्य का वचन नहीं पहुंचा। आप बड़े आशीषित हो, मैं बड़ा आशीषित हूं कि परमेश्वर ने हमें चुना अपना सत्य के वचन देने के लिए। हर किसी के लिए ये योजना नहीं है, चाहे वो आप किसी बड़े से बड़े की भी बात कर लो, नहीं पता है ये योजनाओं का, नहीं पता है। तो ये जन्म अगर कोई बोलता है, ये है वो असली जन्म, और जिसकी शुरुआत किससे होती है, सत्य का वचन। और सत्य क्या है, तेरा वचन सत्य है। आपको आत्मा के बारे में सच्चाई नहीं पता है, आपको नरक के बारे में सच्चाई नहीं पता है, आपको कलीसिया के योजना का नहीं पता है, और आप बोलते हो मेरे पास पवित्र आत्मा है, ऊखा नबाशिक गिरा डाला, कर लो जितना मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक सत्य नहीं मिलता। सत्य है स्टैंप किसकी, परमेश्वर की ओर से, कि तुम इस चुनाव में हिस्सेदारी डाल सकते हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें वफादारी साबित करनी है। मोहर कहने का मतलब, परमेश्वर जब हमें सत्य भेजता है, एक तरह का हमें बुलावा भेजता है कि अभी तुम बुलाए हुए में से चुने हुए की स्थिति में जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये है पहला फल धरती का, सृष्टि का पहला फल, धरती का भी नहीं, सृष्टि का। 1,44,000 जैसे नाम दिया गया है, नई सृष्टि, नाम दिया क्या है, नई सृष्टि। और ये किस में से होंगे, प्रकाशित वाक्य 5:9, शायद ब्राह्मण फैमिली से आपको बुलावा भेजा है।
5:9 संचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है।
नहीं नहीं, प्रकाशित वाक्य
5:9, वे नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद होकर अपने लहू।
प्रकाशित वाक्य 5:9
वे ये नया गीत गाने लगे, नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है,
ओके,
क्योंकि तूने बद होकर अपने लहू से
हरे कुल और भाषा और लोग और जाति में से
परमेश्वर के लिए लोगों को बोल दिया है।
तो हर एक कुल, तो ये 1,44,000 जो होंगे, जो पहला फल, ये चाहे एक जाति में से एक ही हो, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर उनकी ड्यूटी लगाएगा उनको चलाने के लिए। अच्छा, ब्राह्मण फैमिली को सत्य में लेके आना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको संभालना, हाँ, सबको वो करना है। लेकिन ईसाइयों को ये बात नहीं पता है, किसी को नहीं पता ये बात, ये बड़ा गुप्त तरीके से चुनाव चल रहा है। परमेश्वर जिसको चाहता है उसी को बोलता है, चलो तुम चुन लिए गए, अब आ जाओ। तो क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है जो हर एक के पे प्रकट करने की परमेश्वर की योजना भी नहीं है, योजना ही नहीं है। पढ़ लो रोमियो 16:25।
अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है उस भेद के।
हाँ, क्या है ये भेद? भेद
के,
भेद। आगे
प्रकाश के अनुसार जो सनातन में छिपा रहा।
हाँ, अभी तुम पे, अभी आप पे प्रकट हुआ, 4-5 साल पहले मेरे पे प्रकट हुआ। ऐसे एक एक करके परमेश्वर चुनता है जिन पे ये रहस्य प्रकट करता है। ये हर एक को देने की परमेश्वर की योजना नहीं है। ये बताएगा, परमेश्वर बताएगा राज्य में, मैंने एक ऐसी योजना रखी थी 1,44,000 की, वो सीट पूरी हो चुकी है अभी। वो ये है, फिर लोग बात करेंगे, अरे हाँ, अरे वो ब्रदर JP, अच्छा वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में चला गया, वाह, वो धरती पे नहीं दिख रहा है ना। ऐसा होगा, आपके फैमिली को आप पे कितना गर्व होगा कि वाह, क्योंकि उस वक्त वो स्वीकार करेंगे सत्य को, उनको स्वीकार करना ही होगा,
क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होगा, वो राज होगा परमेश्वर का, वहाँ सत्यता के अलावा झूठ होगा ही नहीं
वहाँ पे। मैं परमेश्वर का मकसद ही है सबको फिर सत्य सिखाना है, अपनी योजना सिखाएगा सबको कि मैंने ये योजना बनाई थी। तो जब उनको पता चलेगा हमारा बेटा ब्रदर JP, ओ वाओ गुड, चलो हम नहीं हासिल कर पाए, एटलीस्ट वो तो कर लिया। तो ये रहस्य है, एक भेद है जो आज भी भेद ही है। आप बाहर चले जाओ, भेद ही है, किसी को नहीं पता ये योजना का कि 1,44,000 ही है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। तो जो अगर अगर नरूला की कलीसिया में जाके ये बोल दो कि 1,44,000 है गिनती, तो नेक्स्ट डे कोई भी नहीं आएगा, बोलोगे ना 1,00,000 तो इधर ही हो जाएंगे, हम जलंधर के ही है।
इसलिए वो लोग बताते नहीं है ना, असलियत लोग
उनको खुद नहीं पता। सॉरी सर,
अगर पता भी होगा तो वो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से कमा रहे हैं बहुत सारे लोग, असलियत बता देंगे।
एक्चुअली इसके बहाने पता क्या बनाते, जब 1,44,000 मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कलीसिया में, बोलते ये तो इसराइल की बात हो रही है, ये तो इसराइलियों के घराने की बात हो रही है। लेकिन उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए कि वो चिनात्मिक रूप में आत्मिक इसराइल कौन है, कलीसिया, ठीक है। और वो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, वो समझते हैं कि वो ही है, सब वंश चल रहा है, लेकिन वहां पे बदल गया है, ठीक है। तो इसलिए ये एक रहस्य है, ये है औरत का वंश। औरत का वंश कौन है? क्राइस्ट। क्राइस्ट कौन है?
मसीह और कलीसिया।
हाँ, अब आए आप, ठीक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला छोटा है वो फाटक जिसमें जो बहुत कम लोगों को मिलता है। पढ़ लो Matthew 7:14।
क्योंकि सकेत है फाटक और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं।
देखो, बहुत थोड़ों को ये मिलता है ये छोटा रास्ता, ठीक है। और इस ये जो वंश है, मसीह जो है, कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह मिलके सांप के सर को कुचल डालेंगे। ये पढ़ लो Romans 16:12-20। Romans 16:20।
शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र
कुचल देगा। तो कलीसिया को इस्तेमाल करेगा परमेश्वर किसको नाश करने के लिए? इसलिए आज भी शैतान कार्य कर रहा है, क्योंकि कलीसिया कंप्लीट नहीं हुई। जिस दिन 1,44,000 कंप्लीट हो गए, शैतान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या करना है? नाश करना है, कुचलना है, कुचलना है पांव के नीचे से। अभी चलो औरत का वंश देख लिया, कौन है? मसीह। मसीह कौन है? कलीसिया और यीशु मसीह, यीशु और कलीसिया दोनों मिलके बनता है मसीह, ठीक है। और अब सांप का वंश तो देखा ही नहीं अभी तक हमने, अभी ये सांप का वंश कौन है? क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तेरे और औरत के बीच में बैठ दुश्मनी डालूंगा, तेरे और तेरे वंश के बीच में भी क्या डालूंगा, ठीक है। अभी ये औरत का वंश हमने देख लिया है, अभी ये सांप का वंश कौन है जिनकी मसीह के साथ क्या है, दुश्मनी है, जिनकी किसके साथ दुश्मनी है? मसीह के साथ। तो आओ देखते हैं जो यीशु मसीह के केस में थे, शारीरिक रूप में फिर आत्मिक रूप में देखेंगे। यूहन्ना 8:38,
मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है।
तो प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को बोलते हैं मेरा पिता और तुम्हारा पिता क्या है, अलग अलग है। मेरा पिता और तुम्हारा पिता क्या है, अलग है। पर प्रभु यीशु मसीह का पिता तो हम जानते हैं कौन है, परमेश्वर। लेकिन वो पिता परमेश्वर यहूदियों का पिता नहीं था, तो यहूदी उसको बोलते उत्तर में हमारा एक पिता है, तुम क्या बात कर रहे हो। पढ़ लो 41 में, पढ़ लो।
हाँ, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर।
तो वो बोलते हमारा भी परमेश्वर है पिता। प्रभु बोलते, प्रभु क्या बोलते हैं, नहीं अगर तुम्हारा पिता होता
तो तुम व्यभिचार से नहीं जन्मे।
आगे पढ़ लो।
यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ।
तो कारण बताते हैं प्रभु यीशु मसीह, कारण ये है कि तुम पिता वो परमेश्वर के संतान नहीं हो, उसका कारण बताते क्या, अगर तुम होते तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं उसकी इकलौती संतान हूँ, मुझे उसने भेजा है। तो प्रभु यीशु मसीह फिर उनको उनके सही फादर की पहचान करवाता है, सही पिता की पहचान करवाता है 44वें वचन में, पढ़ लो। हाँ जी,
तुम अपने पिता शैतान से हो।
हाँ, तो तुम्हारा पिता है शैतान, मेरा पिता है पिता परमेश्वर। तो इसलिए यहूदी किसकी संतान है बन गए, शैतान। तो शैतान का वंश कौन हो गया, यहूदी। और उनके और मसीह के बीच में क्या हो गई, दुश्मनी। प्रभु यीशु मसीह और उनके बीच में, ठीक है। तो यहूदी बन गए हैं सांप का वंश, ठीक है, और मसीह प्रभु यीशु जो हमारा हेड है उसके दुश्मन बने, जो उस वक्त
और उन्होंने बन गया मसीह और कलीसिया।
हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ, आगे भी है, अभी यहाँ पे एंड नहीं है, ठीक है। ये है दुश्मनी, ठीक है, यहाँ तक दुश्मनी के सांप के वंश ने क्या किया, औरत के वंश को मार डाला। प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, सलीब पे चढ़ा दिया, ठीक है। ये पढ़ लो बात, खुद बोला उन्होंने, मत्ती 27:23 से लेके 25 तक,
हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मानते
हो। नहीं, 27 का 23 से लेके 25 तक, आप 23 का पढ़ रहे हो, 27 पढ़ो, 27 का 23, 27 आगे है सिस्टर, इधर
27 मेरे को बताओ, 23 से
25 तक।
अच्छा ठीक है। हाकिम ने कहा क्यों उसने क्या बुराई की है, परंतु वे भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कुछ नहीं बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो।
तो वो क्या बोले आगे के बोलो, वो देखो वो क्या बोले।
सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो,
हम जिम्मेदारी लेते हैं
इस पर। उसने
बस बस बस, तो प्रभु यीशु मसीह जो हेड था, जो औरत का वंश था, वो है प्रभु यीशु मसीह। यानी अभी हम हेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो शरीर तो नहीं था ना, हम कलीसिया तो नहीं थी उसके साथ। जब उस वक्त दुश्मनी हुई तो कलीसिया नहीं थी, तो कलीसिया के लिए भी दुश्मन कोई होना चाहिए ना। वो सांप का वंश उस वक्त तो यहूदी बने, वो कौन थे? उसके खुद के लोग।
और यीशु मसीह को मरवा दिया,
यीशु मसीह को मरवा दिया खुद के लोगों ने। क्या कर दिया? अंतर क्या था? उनके पिता और उनके पिता में अंतर था। उनका पिता था शैतान यहूदियों का, और यीशु मसीह का पिता था पिता परमेश्वर। इसी तरीके से शरीर के साथ भी होने जा रहा है। ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। मत्ती 13 का 24 से लेके 26 तक पढ़ लो, 13 का 24 से 26। तो वो उस वक्त बने थे शैतान का वंश, लेकिन आज कौन है शैतान का वंश? सांप का वंश। हाँ जी, 13 का 24 से 26 एक दृष्टांत।
यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया।
एक ही खेत है और उसमें क्या बीज बोया जा रहा है? अच्छा बीज। हाँ,
पर जब लोग सो रहे थे,
जब प्रेरित मर गए, ये लोग कौन है? जब प्रेरित मर गए,
हाँ, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया।
तो उसी खेत में क्या बीज दिया? जंगली बीज। इस दृष्टांत का मतलब क्या है? 38 और 39 भी पढ़ लो इसी का ही।
हाँ,
खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है।
देखा, जंगली बीज कौन है? दुष्ट की संतान। दुष्ट की संतान का मतलब पता क्या है? दुष्ट कौन है? झूठ, झूठा, झूठ का पिता। ठीक है, और दुष्ट की संतान में भी क्या होगा गुण? झूठ, झूठ, झूठ जो चलता है। आगे पढ़ लो, और वो दुश्मन कौन था?
संतान है जिस शत्रु ने उसको उनको बोया, वह शैतान है, कटनी जगत का अंत।
बस बस, वो शैतान है। ठीक है, तो कटनी जगत का अंत है, कटाई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह दो तरह के क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं। एक तो सच्चे क्रिश्चियंस हैं जो परमेश्वर की संतान हैं, और एक तो शैतान की संतान है। एक तो शैतान की संतान है, एक तो परमेश्वर। बोलता है अच्छा बीज कौन है? परमेश्वर के राज्य की संतान। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह सत्य था और वो किसकी संतान था? परमेश्वर की। इसी तरीके से कलीसिया के पास सत्य, क्योंकि उनका जन्म कैसे होता है? सत्य से। अभी पढ़ लिया ना याकूब 1:17 में, तो वो है किसकी संतान? परमेश्वर की संतान। लेकिन एक और तरह के क्रिश्चियन हैं
जो सत्य को नहीं जानते,
जो सत्य को नहीं, वो किसकी संतान है? शैतान की संतान। वो परमेश्वर की संतान नहीं है, वो शैतान की संतान है। और ये सत्य, और जरा सोच लो, जैसा मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह भी यहूदी थे और वो भी यहूदी थे, यहूदियों ने यहूदी को क्या कर दिया? मरवा डाला। इसी तरीके से ये शैतान का वंश, यानी ये जो नामी और दिखावे के ईसाई हैं, जो आज बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, ये असली ईसाइयों को
मार देंगे। सही बात है,
ये होगा। जिस दिन आप सत्य के लिए खड़े हो गए ना, आपको पता नहीं, शायद शायद मरवा दिया जाए, ये मरवा दिया जाए। ठीक है, ये है सत्य। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद, मान लो ऐसा तो नहीं होता, अगर आपको सर पे चोट लगे और आपको शरीर में ना कुछ महसूस हो, सारे शरीर को चोट लगती है ना, तो जरा सोचो अगर हेड को चोट लगी है तो शरीर कैसे सही रह जाएगा?
उसको भी दर्द होगा।
तो शरीर कौन है? कलीसिया। शरीर कौन है? कलीसिया। तो जैसे यहूदी और प्रभु यीशु मसीह के बाप में अंतर था, और यहूदी हमेशा उसका विरोध करते थे, ऐसे ही जो ईसाई आज बोलते हैं कि वो मसीह की तरफ से है लेकिन असलियत में वो सच्चे ईसाइयों का विरोध करते हैं, ओके, और यहाँ तक के सच्चाई को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ, आने वाले दिनों की स्थिति बताता हूँ। जब आप क्लासेस में बढ़ जाओगे, अभी अगले हफ्ते आपको एक और चौंका देने वाली बात पता चल जाएगी, जिससे आपको ये साबित हो जाएगा कि इनके पास परमेश्वर की संतान नहीं है। ये साबित कर देंगे अगली तीन क्लास में आपको, जब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की क्लास होगी, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा असली ईसाई कौन है और ये शैतान के वंश कौन है जिसको चला रहा है इस वक्त, पता चल जाएगा अगली क्लासेस में, फिर आप समझ लेना। और इनमें परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही दुश्मनी डाल दी थी, ये दुश्मनी होनी है। आप जब सुनोगे ना तो आपको बोलेंगे अरे ये एक गलत शिक्षा वाला बंदा है, इसकी सुनना भी मत, ऐसे बोलेंगे अपनी कलीसिया के लोगों को, ऐसा बोला जाएगा, इसकी सुनना भी मत, इससे बात भी मत करना, तुम लोगों को खराब कर देगा, ऐसा होगा। ये देख लेना, आने वाले दिनों की बात है। लेकिन अंत में, अंत क्या है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है रोमियों 16:20 में कि वो परमेश्वर शैतान और उसके वंश का सर क्या करेगा, कुचल डालेगा। शारीरिक रूप में नहीं, जब आप मसीह के साथ चले जाओगे उस वक्त इन सब संगठनों को, इनके सब कारनामे बाहर लाए जाएंगे, इनका न्याय किया जाएगा, इनको खत्म कर दिया जाएगा।
तुमने सच्चे ईसाइयों को ऐसे से
सच्चे ईसाई तो ब्रदर बहुत थोड़े हैं,
नहीं नहीं, क्लिसिया के लोगों को,
लोगों को गुमराह, बुलाए हुओं को गुमराह किया, बुलाए हुओं को,
उनको इनकार किया,
बुलाए हुओं को गुमराह किया और सत्य वालों का विरोध किया, ठीक है। तो ये सुन के शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन ये दुश्मनी आज की दुश्मनी नहीं है, ये परमेश्वर ने डाल दी है अदन की वाटिका में, ये परमेश्वर की योजना है, ठीक है। जो ये जो भविष्यवाणी है बहुत जल्दी ये पूरी होने जा रही है। तो परमेश्वर ही, जब क्या होगा कि अभी मैंने बोला था ना आपको, अभी एक संधि बन रही है जिसमें बोला जाएगा कि जो जो भी ईसाई हैं अपने अपने नाम को, कौन से मिशन से हैं, अपने आप को उसके उसमें नाम रजिस्टर करवाओ। लेकिन सत्य वाले बोलेंगे हम नहीं करवाएंगे क्योंकि ये सच्ची कलीसिया नहीं है। फिर उनको पकड़वा मारा जाएगा, ठीक है, बुलाया जाएगा बातचीत करने के लिए, क्या है तुम लोगों का, क्या प्रॉब्लम, क्या है ये,
तो
हाँ, तो ऐसे बातें होंगी, तो ऐसी बातें होंगी अभी बड़ी जल्दी होने वाली हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये हम देखेंगे, और अगर हम देखेंगे तो हम मसीह के शरीर का हिस्सा बनेंगे। तो परमेश्वर ही इन सारे वचनों के साथ हम सबको आशीष दे। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, आमीन।